नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी परसदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रिय द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे दुर्जने सदा कामरत कुछ नहीं मोर गोना गोपीना अमर भरोसा तुमी तुमार शरण लयनु शरण तुमार किंकर आमी गोपीना के मन शोधिले मोरे मने चोरी रे मोरे ना जानी भगति कर्मे गड़ा मचे ना जानी भगति कर्मे गड़ा मचे परित संसार गोरे गोपीना ফাতি মায়া মারতা ফাতি মায়া নাহি মম বল জ্ঞান সুর নির্মলা নাহি মম বল জ্ঞান সুর নির্মলা স্বাধীন নহি এ কায়া অগোপিনা নিজত শরণ স্থানে শরণ স্থানে মাঙ্গে যে পামর কান্ধিয়া কান্ধিয়া মাঙ্গে যে পামর কান্ধিয়া কান্ধিয়া করে করুণা দান করুণা দান গোপীনা সকালি পারো সকালি পারো দুর্জন তারিতে তোমার সকতে দুর্জন তারিতে তোমার সকতে কে আছে পাপির আর গোপীনাথ তুমি কৃপা পারবার তুমি কৃপা পারবার জীবের কারণে আসিয়া প্রপঞ্চে জীবের কারণে আসিয়া প্রপঞ্চে লীলা কল সুবিস্তার অসুর সকল পাইল শরণ অসুর সকল পাইল শরণ ভগতি বিনোদ বলি গোপীনা মম নিবেদন শুন রাধা গোপীনাথ রাধা গোপীনাথ রাজে জয় রাধা গিরিধারি রাধা গিরিধারি রাধে জয় জগন্নাথ জগন্নাথ বলদেব জয় সুভদ্রা জয় গৌরনিতাই 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 জয় গৌরনিতাই জয় জয় প্রভুপাদ 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 sai agora haribola, 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 haribola. Harinam Sankirtan ki Srila Prabhupada Maharaj ki ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की सचिदानंद भक्ति ठाकुर महाराज की जय गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यम् नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके हरे कृष्णा हरि भक्तगण। क्रम के अनुसार श्रीमद् भागवतम अध्याय स्कंद 9 अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 46 और इसका शीर्षक है पुरुषी द्वारा पूर्वा पर मोहित होना। तस्या निर्मंथनात् जात जात वेदा विभावसु त्रया सह विद्या राज्या पुत्रस्वे कल्पितः त्रिवृत्तः तस्य निर्मतां जातो जात वेदा विभावसु त्रयास विधाया राज्या पुत्रत्वे कल्पित त्रिस्वृतो तस्या नर्मिता जातो जात वेदा विभावसो त्रयास विधया राज्या पुत्रत्वे कल्पित त्रिवृत तस्य निर्मथान जातो जात वेदा विभावसु प्रयास विधया राज्या पुत्रत्वे कल्पित त्रिवृत पुत्रस्य कल्पित स्त्री तस्या निर्मंथनां जातो जातो वेदा विभावतो कर्यक्ता विधाराज्या माताजी तस्या निर्मंथना जातो जातो वेदा विभावतो या सविद्याराज्या पुत्रस्य कल्पिता तस्य निर्मंथना जातो जातो वेदा विभावतो तस्य पुत्रस्कल्पिता स्त्रीवृता निर्मंथना जातो जातो वेदा विभावतो त्रयास विद्याराज्या पुत्रस्य कल्पिता स्त्रीवृता। इस श्लोक में आए हुए शब्द इस प्रकार है, तस्य पूर्ववाक्य निर्मंथनात् मंथन या संगलन से जात उत्पन्न हुआ, जात वेदा वैदिक सिद्धांतों के सर्व भौतिक भोग के निमित्त विभावसु अग्नि क्रिया वैदिक सिद्धांतों का पालन करते हुए सह अग्नि विद्या ऐसी विधि से राज्या राजा द्वारा पुत्रत्वे पुत्र उत्पन्न होना कल्पित ऐसा हुआ कि त्रिवृत्त तीन अक्षर अ उ म मिलकर ओम अनुवाद पुनर्वाद द्वारा अरण्यों के रगड़ने से अग्नि उत्पन्न हुई। ऐसी अग्नि से मनुष्य को भौतिक भोग में सफलता मिल सकती है और वह जन्म दीक्षा तथा यज्ञ करते समय शुद्ध हो सकता है। जिन्होंने ओम शब्द के द्वारा आह्वान किया जा सकता है, इस प्रकार वह अग्नि राजा पुरुवा का पुत्र मान ली गई। तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की वैदिक विधि के अनुसार मनुष्य को वीर्य शुक्र द्वारा पुत्र प्राप्त हो सकती है, दीक्षा द्वारा सभी प्रमाणिक शिष्य प्राप्त हो सकता है, अथवा यज्ञ की अग्नि यज्ञ द्वारा पुत्र या शिष्य प्राप्त हो सकता है। इसी तरह जब पुरुर्वा ने अरुण्योप्य मंथन से अग्नि उत्पन्न की तो अग्नि उसका पुत्र बन गया। मनुष्य को वीर्य दीक्षा अथवा यज्ञ द्वारा पुत्र लाभ हो सकता है। ओमकार या प्रवण मंत्र वैदिक मंत्र के तीन अक्षर अ ओ म होते हैं जो इन तीनों विधियों के घोषक है। अतएव निर्मंत्रणा जात शब्द बतलाते हैं कि अरुणियों के रगने से पुत्र उत्पन्न हुआ। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिधनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते सप्तकान्तन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। सकल्पतरुभ्यः स कृपा सिन्धुभ्य एव स पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। जय श्री श्री गौर निताई की। श्री प्रभुपाद महाराज की। तो सभी वैष्णव और वैष्णवियों के शरण में दंडवत प्रणाम करते हुए इस शुभ अवसर पर के भी चार दिन बहुत महत्वपूर्ण था और अगले कल भी महत्वपूर्ण है। जो माधव तिथि माना जाता है वो एकादशी थी, फिर कल वामन द्वादशी थी, आज भक्तिनाथ ठाकुर महाराज का आयुर्वाद दिन है और कल हरिदास ठाकुर का भी आयुर्वाद दिन है। तो ये चार दिन वैष्णव के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। तो इसी प्रसंग के अनुसार हमें ये भी अवसर आज प्राप्त हो रहा है कि भक्तिनाथ ठाकुर महाराज का जीवन चरित्र पर कुछ चर्चा करने का अवसर हमें दिया गया है। वैसे आज का भागवतम क्लास और हर साल भक्तिनाथ ठाकुर महाराज के आयुर्वाद दिन पर चंद्रगोपी प्रभु चर्चा करते और बताते हैं उनके जीवन चरित्र, लेकिन उन्होंने हमें कहा कि आप बताइए इस बार, तो उनकी आज्ञा और मैनेजमेंट की आज्ञा से हमें ये अवसर प्राप्त हुआ। तो जितना हो सके इतना हम बताने का प्रयास करेंगे और त्रुटि भी होगा उसमें आप क्षमा कीजिए, फिर कुछ वचन समझकर। तो थोड़ा आज के श्लोक पर जो नित्य क्रम के अनुसार श्रीमद् भागवतम नौवां स्कंद चौदह अध्याय और आज का श्लोक है 46 नंबर का। उस पुरुर्वा महाराज ने जो उर्वशी के विरह में थे तो फिर यज्ञ किया, तो यज्ञ में जो अरणी थी उसको घिस घिसीट कर उसमें अग्नि प्रकट हुआ और अग्नि उसको पुत्रा माना गया। संक्षेप रूप में इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है। तो ये सोम वंश का वर्णन चल रहा है भी, जो ब्रह्मा जी के द्वारा अत्रि मुनि का प्रागित हुआ। अत्रि मुनि से चंद्र जी और चंद्र से बुध और बुध से पुरुर्वा, ये चौथा पांचवा विधि चल रहा है पुरुर्वा महाराज। और ये घटना सतयुग की है। जब ये सतयुग में पुरुर्वा महाराज का जन्म हुआ और वो राज कर रहे थे, और उसी समय वो उर्वशी से उर्वशी उन पर मोहित हो गए, क्योंकि वो इतना शक्तिशाली बलशाली और ऐश्वर्यवान थे पुरुर्वा महाराज। तो उनकी कथा नारद मुनि भी स्वर्ग में कीर्ति गाया करते थे, तो उस कीर्ति सुनकर उर्वशी उन पर मोहित हो गए, और इस पृथ्वीलोक में जो कि उनको श्राप के कारण इस पृथ्वीलोक में आना था, तो उसी को बहाना बनाकर पुरुर्वा महाराज से मोहित होकर उनसे शादी की। जब शादी की तो उनके शर्त रखी थी, वो शर्त पूरा न होने के कारण फिर वो चली गए उर्वशी। तो उर्वशी जाने के बाद वो इतने मोह में और हो गए। फिर बाद में एक बार घूमते घूमते कुरुक्षेत्र के मैदान पर पुरुर्वा महाराज आए, तो वहाँ उर्वशी से फिर से मुलाकात हुई। वो भी उधर घूमने के लिए, क्योंकि कुरुक्षेत्र मैदान देवभूमि माना जाता है, देव भी उधर स्वर्ग से उधर कुरुक्षेत्र में भ्रमण करने के लिए आते हैं। तो उधर उर्वशी भी आए थे और पुरुर्वा महाराज भी उधर पहुंचे थे, तो दोनों का फिर से मुलाकात हुई। फिर पुरुर्वा महाराज ने बहुत विनती की और उर्वशी को कहा कि आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई। फिर उर्वशी ने कहा कि मैं एक साल में एक बार आपको मिलूंगी। फिर उसी तरह 6 साल तक पुरुर्वा महाराज उर्वशी से मिलते रहे और उनको 6 पुत्र प्राप्त हुए पुरुर्वा महाराज को। फिर बाद में पुरुर्वा महाराज ने कहा कि आप नित्य हमारे साथ रहिए, ऐसा कुछ उपाय बताइए ताकि हम नित्य हमारे साथ रह सकें। तब उर्वशी ने कहा कि आप गंधर्व की तपस्या कीजिए, और गंधर्व की तपस्या करने के बाद मैं आपके साथ नित्य रहूंगी। लेकिन वो विधि बताई वो ठीक से नहीं बताई उर्वशी ने। फिर बाद में पुरुर्वा महाराज ने गंधर्व की तपस्या बहुत साल तक की, और गंधर्व प्रसन्न होकर उनको उर्वशी जैसी एक स्त्री दिया, लेकिन उर्वशी नहीं दिया पुरुर्वा महाराज को। जब उर्वशी ने बताया था कि आप गंधर्व की तपस्या करो तो मैं आपको प्राप्त होंगी, लेकिन गंधर्व प्रसन्न होने के बाद उनको दिया, लेकिन उर्वशी नहीं दिया, उनकी जैसी और स्त्री दी। तो जब उनसे मिले वो दिया, तब उनसे मिले, तब फिर बाद में उनको मालूम पड़ गया पुरुर्वा को कि उर्वशी नहीं है, उनकी जैसी है। फिर उनको उसी साल पर छोड़ दिया, जो अग्निस्थली उनका नाम था, वो जो गंधर्व ने दिए थे वो। तो फिर वो चले गए। फिर वो विरह में, इतने विरह में हो गए, और कई साल तक वो विरह में रहे पुरुर्वा महाराज। और उसी समय अंतर सत्ययुग का अवधि समाप्त होने वाले थे और त्रेता युग आरंभ होने वाला था। तो सत्ययुग का युग धर्म है धायतो विषयान कृत्य धायतो विष्णु। तो सत्ययुग का विधान है कि ध्यान करना, कई सालों तक व्यक्ति ध्यान कर रहे थे। फिर त्रेता युग का युग धर्म परिवर्तन होने वाला था, तो उसी को हृदय में प्रकाशित किया भगवान के द्वारा पुरुर्वा महाराज को, और ये विधि दिया कि त्रेताय यजतो मखे। त्रेता युग का युग धर्म है यज्ञ करना, तो इसी को पूर्व माध्यम बनाकर इस युग धर्म को स्थापना की भगवान के द्वारा। फिर से इसी यज्ञ किया पूर्वा महाराज। तो इस यज्ञ में हम देखते हैं कि ना ही कोई होता है, ना कोई यजमान है, वही अकेले है पूर्वा महाराज। कोई होता नहीं है, कोई यजमान नहीं है, कोई उद्गाता नहीं है, क्योंकि प्रारंभ है यज्ञ विधि युग धर्म की। प्रारंभ त्रेता युग का प्रारंभ हुआ, इसलिए यज्ञ विधि का यह प्रारंभ था। तो इस यज्ञ विधि को प्रारंभ करने के लिए पुरुर्वा महाराज ने यज्ञ किया, और यज्ञ के फल स्वरूप उनको अग्नि प्रकट हुई और वो पुत्र के रूप में प्राप्त। लेकिन उनका अग्नि कौन से रूप में पुत्र आए उनका व्याख्या आगे कहीं नहीं है। उनका जो 6 पुत्र हुआ उनकी वंश आगे 15वें अध्याय में बताया है, लेकिन उसी के द्वारा जो पुत्र हुआ उनका है, जो यज्ञ द्वारा भी जो पुत्र हुआ अग्नि, उनका कुछ उल्लेख नहीं है। तो इसी तरह पूर्व महाराज यज्ञ करके और फिर प्रभुपाद ने इस श्लोक में तात्पर्य में बताते हैं कि मनुष्य को एक शुक्र यानी वीर्य द्वारा पुत्र प्राप्ति होती है और एक दीक्षा का द्वारा दीक्षा के द्वारा पुत्र प्राप्त होता है और तीसरा बताया है कि यज्ञ द्वारा। तो दीक्षा का द्वारा पुत्र प्राप्त होना मतलब क्या? जब हम दीक्षा ग्रहण करते हैं तो अब हम गुरु महाराज पहले ही बताते हैं कि ये आपका दूसरा जन्म है। तो वास्तविक उसी दीक्षा हम ग्रहण करते हैं तब हमारा वास्तविक पिता गुरु महाराज बन जाते हैं, गुरु महाराज होता है। फिर हमारा जो रिश्ता है वो टूट जाता है भौतिक और वास्तविक पिता गुरु महाराज। दीक्षा का मतलब और दीक्षा के पुत्र दीक्षा के कारण जो पुत्र प्राप्त होता है वो इसी के हिसाब से होता है। और पुत्र तो होता है जो वीर्य के और शुक्र से होता है और यज्ञ में भी पुत्र उत्पन्न होते हैं। कहीं ऐसी भागवत में घटना भी है कि जो यज्ञ से पुत्र है या उत्पन्न हो सके। ज्यादा करके दो कार्य के लिए यज्ञ से पुत्र उत्पन्न किया जाता है। एक वंश को वृद्धि करने के लिए, जब अक्षम रहता है राजा तब यज्ञ करके पुत्र प्राप्त करता है, और दूसरा जब कोई शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करना होता है तब यज्ञ करके पुत्र प्राप्त करते हैं। जैसे राजा द्रुपद ने भी यज्ञ किया था और उसमें भी उनको द्रौपदी और दृष्टद्युम्न प्राप्त हुए थे, क्योंकि उनको द्रोणाचार्य से कुछ अनबनाव था। जब द्रोणाचार्य और द्रुपद राजा दोनों मित्र थे, बचपन में पढ़ाई साथ में करते थे गुरुकुल में, तब द्रोणाचार्य और पढ़ाई समाप्त होने के बाद द्रोणाचार्य तो ब्राह्मण थे तो अपने आश्रम में चले गए घर पर, और द्रुपद महाराज जो राजा थे तो अपने राज्य में चले गए और वो राजा बन गए। और द्रोणाचार्य ब्राह्मण होने के कारण किसी के साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं था कि जो अपना आमदनी चला सके, और अध्ययन उसमें उसका जीवन व्यतीत, और उनका एक पुत्र भी था अश्वत्थामा, वो छोटा था, लेकिन स्थिति इतनी विकट थी जो उसी समय, तो उनको पुत्र का पालन करने के लिए भी कुछ चीज़ें आवश्यक नहीं थी। तो एक बार उनको अश्वत्थामा को दूध पिलाने के लिए दूध की आवश्यकता पड़ी, लेकिन उनके पास नहीं था, तो उनकी पत्नी कृपी ने उस आटा मिलाकर दूध जैसा बनाकर उनको पिलाया। तब ये दृश्य देखकर द्रोणाचार्य ने देखा कि मुझे कुछ अभी कुछ करना पड़ेगा पुत्र के लिए, तो उसने सोचा कि द्रुपद मेरा मित्र है जो हम साथ में गुरुकुल में पढ़ते थे, उनके पास अभी तो राजा है तो उनके पास कुछ गाय या कुछ धन मांग कर अपना जीवन व्यतीत कर, इतना धन उनसे मांग लेता हूँ। तो राजा के पास गए द्रोणाचार्य, तो उनके पास जाने के बाद उनको समाचार भिजवाया कि आपसे मिलने के लिए कोई ब्राह्मण आए। तब उसने द्रुपद ने द्रोणाचार्य को पहचानने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं कहाँ राजा और कहाँ तुम ब्राह्मण, तुम्हारी स्थिति क्या है, तुम मेरा मित्र कभी हो ही नहीं सकते हो। इसी तरह उनका अपमान करके द्रोणाचार्य को वहां से भेज दिया। तो बहुत दुख लगा द्रोणाचार्य को कि हम साथ में पढ़े गुरुकुल में कितने साल तक रहे और आज राजा बन गए और अहंकार के वश पहचानने का भी इनकार कर दिया। तो इसे बहुत दुख लगा। तो दुख लगने के बाद वो वापस आ रहे थे, उसी समय ये पांडव जंगल में राजधानी के बाहर खेल रहे थे। तो खेलते समय उनका गैंग था वो कुएं में गिर गया, तो उनको निकालने के लिए प्रयास कर रहे थे वो लोग 500 पांडव सब। तब वो द्रोणाचार्य ने देखा कि कुछ बच्चे प्रयास कर रहे हैं वो निकालने के लिए, निकाल नहीं पा रहे थे गैंग। तो द्रोणाचार्य ने धनुष बांध की विद्या से वो गैंग को बाहर निकाल दिया। तो इस विद्या को देखकर आश्चर्य चकित हो गए तब ये 500 पांडव, खास करके युधिष्ठिर महाराज। तब वो बात भीष्म पिता को कहा, तो बात जानकर भीष्म पिता द्रोणाचार्य के पास आए। फिर उसने कहा कि हमारे ये जो मरहत्वर है जो 5 पांडव और 100 कौरव, उनको आप विद्या सिखाइए। तरुण बार विद्या तो सिखाने लगे, तो फिर बाद में उनके पास ऑटोमेटिक सब धन आ गया क्योंकि राज से जुड़ गए वो हस्तिनापुर से। तो जुड़ने के बाद फिर समय आया, उनको पूर्ण रूप से विद्या सिखा दिया पांडवों को, खास करके अर्जुन को। तब अर्जुन ने कहा कुछ दक्षिणा मांगी है गुरु दक्षिणा, तब द्रोणाचार्य ने कहा कि मुझे राजा द्रुपद चाहिए, उनको आप प्राप्त करके उनको बंदी बना कर इधर लाइए। तब अर्जुन और सब गए उधर, राजा द्रुपद के साथ युद्ध हुआ और उनको बंदी बनाकर लाए, तो वो भी बहुत अपमानित हुए राजा द्रुपद। और फिर बाद में द्रोणाचार्य ने मुक्त करके, आप जाइए जी, अभी मुझे आपसे कुछ नहीं लेना है। तो द्रुपद राजा बहुत अपमानित होकर फिर बाद में अपने राजधानी लौट गए। फिर उसको बहुत अपमान होने के बाद यज्ञ किया, मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो द्रोणाचार्य से द्रोणाचार्य का वध कर सके। तो इसी यज्ञ किया, तो कहना का तात्पर्य यही है कि यज्ञ में पुत्र या वंश वृद्धि के लिए करते हैं या किसी शत्रु को परास्त करने के लिए। तो उसी यज्ञ किया द्रुपद राजा ने, तो यज्ञ में पुत्री उत्पन्न हुई और एक पुत्र, जो पुत्र था वो दृष्टद्युम्न था और पुत्री थी वो द्रौपदी थी। तो इसी तरह तीन प्रकार के प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि मनुष्य का उत्पत्ति होता है। तो राजा पूर्व इसी प्रकार युग धर्म की स्थापना के लिए ये यज्ञ किया, मुख्य हेतु यही था कि युग धर्म की स्थापना करके। और खुद यज्ञ किए और युद्ध गाता हवन वो सब उसी ने किया, क्योंकि युग धर्म का शुरुआत था। फिर आगे और कथा प्रसंग के अनुसार, तो इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम का क्रम चलता है और पूर्व महाराज का चरित्र भी एक दो श्लोक है, फिर बाद में समाप्त होगा। फिर बाद में परशुराम का जीवन चरित्र पर कथा होगी 15वें अध्याय में। तो आज विशेष दिन हम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर महाराज का आविर्भाव दिन है, तो उसके बारे में ज़्यादा हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन जितना सुना है उसी को बताने का प्रयास करेंगे हम। श्री भक्तिविनोद ठाकुर महाराज शुद्ध भक्ति के भगीरथ को, प्रवाह को वर्तमान समय में प्रसारित करने के लिए भगीरथ रूप में प्रकटित हुए हैं। और उनका पिता का नाम है कृष्णानंद दत्त और उनकी माता का नाम है जगत मोहिनी। और जो बड़े सौभाग्यशाली है उनके पिता और उनके माता, जो ऐसे शुद्ध वैष्णव जो उनके जग मोहिनी माता के गर्भ से आविर्भाव हुए हैं, बहुत भाग्यशाली है। और वैसे कृष्णानंद दत्त वो भी महान भक्त थे और खास करके उनका चित्त नित्यानंद प्रभु के शरणों में लगा हुआ था। तो इसी सौभाग्यशाली कृष्णानंद और जगत मोहिनी के पुत्र के रूप में श्री भक्तिविनोद ठाकुर का आविर्भाव हुआ आज के दिन भादो मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी के दिन सितंबर 2 तारीख 1836 जो आज के दिन वो इस धराधाम पर आविर्भाव हुए। वैसे ही भक्तिविनोद ठाकुर महाराज नित्य लीला में रूप विलास मंजरी है भक्तिविनोद ठाकुर महाराज, और वो रूप विलास मंजरी है और इस भौतिक जगत में हरिनाम को प्रसार करने के लिए आविर्भाव हुए हैं। और रूप विलास मंजरी और कहा जाता है हमारे वैष्णव के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, कि 6 गोस्वामी में वो सप्तम गोस्वामी भी माने जाते हैं। 6 गोस्वामी जो रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास गुनाथ वो 6 गोस्वामी है, और 7वें गोस्वामी श्री भक्तिविनोद ठाकुर महाराज हैं। तो इस शुद्ध भक्ति रूपी गंगा प्रवाह को प्रसारित करने के लिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर महाराज का प्रागत्य हुआ इस सितंबर 2 तारीख 1836 में, और नदिया गांव में, जो बंगाल में है नदिया गांव, उसी में उनका आविर्भाव हुआ। और जन्म के बाद कुछ दिनों के बाद वो पढ़ाई किए, पढ़ाई के अंतर 5 साल के आयु में वो बहुत श्रुतिवान श्रुतिधर थे, कुछ भी सुन लेते तो तुरंत ग्रहण कर लेते थे। ऐसे वो पढ़ाई करते करते समय वो पढ़ाई ज्यादा कर वो अपने मामा के घर किए हैं, कलकत्ता के बाजू में जो गांव था उसी गांव में, तो वहाँ पढ़ाई कर रहे थे अपने मामा के घर। पढ़ाई करने के बाद फिर 12 साल हुए उनका, तो 12 साल में उनकी शादी हो गई। उसी समय बचपन में शादी करवा देते थे, तो उनकी शादी हुई 12 साल के अंतर्गत, और उनकी पत्नी का आयु था 5 साल की। तो 5 साल की आयु और भक्तिनाथ ठाकुर महाराज का जो केदारनाथ दत्त नाम था उनका, 12 साल की आयु में उनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद जब 13 साल हुए, एक साल के बीच शादी होने के बाद एक साल के बाद उनका पिताजी का देहांत हो गया, कृष्णानंद दत्त का देहांत होने के बाद फिर वो अपने मामा के घर गए कलकत्ता, और वहाँ वो पढ़ाई किए। पढ़ाई करने के बाद कुछ समय वो अध्यापक रूप में रहे और कुछ विद्यार्थियों को पढ़ाते भी साथ में थे, और पढ़ाते उसी समय वो भागवत ग्रंथ का भी अध्ययन करते थे, क्योंकि उनका चित्त उसी में लगा हुआ था, भक्ति में और खास करके श्रीमद् भागवतम का अध्ययन। तो उसी समय कलकत्ता में पढ़ाई कर रहे थे और साथ साथ में भागवतम का अध्ययन भी कर रहे थे। उसी दौरान किसी शहर में एक बड़ा पंडाल का आयोजन हुआ था, तो उसी पंडाल में उनको आमंत्रित किया था भक्तिनाथ ठाकुर महाराज को प्रवचन देने के लिए भागवतम के ऊपर। तो गए वहाँ कलकत्ता के बाजू में कोई बंगाल में और शहर था, उस शहर में तो वहाँ जाकर भागवतम के ऊपर प्रवचन दिया भक्तिनाथ ठाकुर महाराज, और सभी जो आए थे सुनने के लिए श्रोताओं सब बहुत प्रभावित हुए उन प्रवचन से, और प्रभावित होकर फिर बाद में और उनकी ख्याति बढ़ने लगी उसी समय से भक्तिनाथ ठाकुर महाराज की। और ख्याति बढ़ते बढ़ते और अध्ययन चल रहा था और साथ साथ में पढ़ाई भी चल रही थी, फिर ख्याति होने के बाद और भागवतम की और स्टडी करने लगे वो भक्तिनाथ ठाकुर महाराज, और पढ़ाई और विद्यापन और विद्यार्थी को पढ़ाते भी साथ में थे। तो पढ़ाते पढ़ाते और उनकी ख्याति होने लगी, फिर बाद में उनको जगन्नाथपुरी के लिए आमंत्रित किया गया कि आप जगन्नाथ मंदिर जगन्नाथपुरी आइए और जगन्नाथ मंदिर में आप कार्यभार संभालिए और पूरा मंदिर का आप देखरेख कीजिए और आप जगन्नाथपुरी पधारिए। तो फिर कलकत्ता से फिर जगन्नाथपुरी गए, और उसी समय वो पूर्ण रूप से पढ़कर वो वकील की और जज बन गए थे, तो उसी पोस्ट को लेकर वो जगन्नाथपुरी गए। तो जगन्नाथपुरी जाकर सबसे पहले जो मंदिर में चल रहा था प्रसाद नियमित न लगना, उस ब्राह्मणों के द्वारा उपद्रव था, जो याद कल प्रभुपाद जी अपने लेखन में बता रहे थे कि कुछ ब्राह्मण भी ऐसे थे उसी समय जो यात्री दर्शन के लिए आए थे, तो उनको परेशान भी करते थे, तो बहुत उधर कष्ट था। तो भक्तिनाथ ठाकुर महाराज ने वो सब ठीक किए, और उधर और भी एक उसी जगन्नाथपुरी के उड़ीसा में एक गांव में एक पाखंडी जो अपने आप को भगवान समझता था और पूरे लोगों को कहता था कि मैं ही महाविष्णु का अवतार हूँ, विशिक्षण उनका नाम था। अब विशिक्षण वो अपने आप को कहता था कि मैं महाविष्णु का अवतार हूँ और मैं ही इस युग में पूर्ण रूप में भगवान के प्रगट हुआ हूँ और सब मेरे शरण में आई, और पूरा श्रद्धा के साथ लोगों को अंत श्रद्धा तो है ही, लेकिन ऐसे व्यक्ति अंधश्रद्धा को लोगों को जो श्रद्धा को लाभ लेकर उनको अंधश्रद्धा में परिवर्तन कर देते हैं, जो वास्तव में ध्वंगे होते हैं, पाखंडी होते हैं। तो भक्तिनाथ ठाकुर महाराज भी उसी समय जगन्नाथपुरी में थे, और ये उड़ीसा में पूरी उड़ीसा में उनके बारे में चर्चा हो रही थी कि वास्तव में ये भगवान है, और कई चमत्कार भी बता रहे थे। वो बड़ा योगी था विशिक्षण, तो ये योगी होने के कारण कुछ कुछ ऐसे चमत्कार भी बताते थे, किसी का कुछ तबीयत ठीक नहीं हो तो अच्छा कर देते थे और हाथ में से अग्नि प्रकट करते थे और गुलाल भी ऐसे निकलते, और चमत्कार तो करते हैं योगी लोग, तो ऐसे चमत्कार करके और सबको प्रभावित करते थे और अपने आप को भगवान कहते थे, और पूरा उड़ीसा में उसी का ही चर्चा चल रहा था। तब अंग्रेजों का शासन था, तो वो भयभीत होने लगे अंग्रेजों, और वो सोचने लगे अगर ये व्यक्ति, उनको तो कुछ ज्ञान नहीं था अंग्रेजों को, अगर वो सचमुच भगवान है तो हमको तो ये यहाँ से निकाल देगा, उनका उनका पूरा भारत में राज्य था अंग्रेज का, तो उसका कुछ करना पड़ेगा, अगर वो डायरेक्ट उन पर हमला करेगा अंग्रेज लोग उनको पकड़ने के लिए या उनको गिरफ्तार करने के लिए, तो पूरा क्योंकि वो पूरा उड़ीसा में छाया हुआ था उनका श्रद्धा, तो पूरा आंदोलन शुरू हो जाएगा, तो डर से पकड़ नहीं पा रहे थे उनको विशिक सेन को। तो फिर कुछ सोच रहे थे, उसी में उनको किसी ने बताया, एक युक्ति बताया कि इसी समय जगन्नाथपुरी में जो केदारनाथ दत्त है वो उनके लिए पर्याप्त है, आप उनसे मिलिए और उनको कहिए कि उनको समझाने के लिए या कुछ भी उनको करके यहाँ से हटाने के लिए। तब वो अंग्रेज मिलकर अंग्रेज ऑफिस भक्तिनाथ ठाकुर महाराज के पास गए जगन्नाथपुरी में, सर जगन्नाथपुरी में जाकर भक्तिनाथ ठाकुर महाराज से मिले वो और कहा, भक्तिनाथ ठाकुर महाराज तो समझ गए उनको क्या स्वार्थ है, लेकिन भक्तिनाथ ठाकुर महाराज का यही भाव था कि जो लोगों को ठग रहे हैं, जो उनकी श्रद्धा को ठेस पहुंचा रहे हैं, ऐसे को हमें सजा देना चाहिए, वास्तव में जो पाखंडी है, ढोंगी है और अपने आप को भगवान कहते हैं, ऐसे लोगों को निश्चित रूप से सजा देना चाहिए। तो वही उनका भाव था और अंग्रेजों का कुछ और भाव था, लेकिन उसने प्रस्ताव रखा तो भक्तिनाथ ठाकुर महाराज ने स्वीकार कर लिया कि मैं उस आपका कार्य करूंगा, उसको ऐसा कहा। फिर उसी को लेकर श्रीमद् भागवतम को लेकर उनके पास गए, जो विशिक सेन जिस गांव में थे वो गांव में जाकर वो भी योगी थे बड़े, वो जान गए कि केदारनाथ दत्त आ रहे इधर और उनका हेतु क्या है, तो निश्चित रूप से हमें तकलीफ पहुंचाएगा। तब भक्तिनाथ ठाकुर महाराज जो केदारनाथ दत्त थे वो आए, उनको मिले। तब मिलते उसने कहा कि केदारनाथ दत्त, आप जिस हेतु से आए हो मैं जान गया हूँ, लेकिन आप हमें छोड़ दो और मैं आपको पूरा भारत का राजा बना देता हूँ, पूरा भारत का राजा बता, आप मुझे छोड़ दो। तो भक्तिनाथ ठाकुर महाराज कहते हैं कि भारत पूरे विश्व का राजा तो जगन्नाथ जी है, तो आप इधर भगवान बनकर बैठे हो, तो आप योगी हो, आपके पास बहुत सिद्धि है, तो उनका लाभ आप भगवान की सेवा में लगाइए, आप जगन्नाथ जी की सेवा में आइए और जगन्नाथपुरी में निवास कीजिए। तब जो योगी ने कहा कि वास्तव में तो जगन्नाथ जी को तो जड़ है, वो दारू है, वो भगवान नहीं है, वास्तविक भगवान तो मैं हूँ, इस कलयुग में मेरा अवतार हुआ है, मैं विष्णु का अवतार हूँ, महाविष्णु का। तब भक्तिनाथ ठाकुर महाराज ने उनके साथ जो कॉन्स्टेबल थे, पुलिस थे, उसको बोला कि आप तुरंत उनको गिरफ्तार कीजिए, ये भगवान नहीं है, ढोंगी है और लोगों को ठग रहा है। तब उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और अपनी योगिक शक्ति के द्वारा भक्तिनाथ ठाकुर महाराज का परिवार में बहुत कष्ट आने लगा और बीमार होने लगे, उनकी पत्नी, उनके बच्चे सब बीमार होने लगा और उनकी पत्नी जो भागवती कृपा माता जी है, भक्तिनाथ ठाकुर महाराज की पत्नी, जो उनकी दूसरा भी शादी किया था, पहली पत्नी जो 5 साल की आयु में जो इनकी शादी हुई थी, उनका देहांत हो गया था, फिर बाद में दूसरा शादी किया था भक्तिनाथ ठाकुर महाराज ने, उनकी वो ये पत्नी का नाम है भागवती माता जी, तो वो भी बीमार हो गए बहुत और उसने कहा कि आप उन्हें छोड़ दीजिए, ये हमें अब नष्ट कर देगा, ये मार डालेगा ये योगी। ये वास्तव में उनको भी थोड़ा श्रद्धा था कि शायद भगवान हो सकता है, क्योंकि इतना कष्ट दे रहे हैं सबको, तो बोला कि आप उनको छोड़ दीजिए, क्यों अपने आप को परेशान में डाल रहे हो। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, नहीं, ऐसे लोगों को तो ऐसे ही सजा होना चाहिए, फिर हमारा मृत्यु क्यों ना हो जाए, हमारा पूरा परिवार नष्ट हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन ऐसे लोगों को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। तब फिर भी उनको ये कष्ट आता रहा, फिर वो उसको कोरट में एक दिन लाया गया, तो कोरट में लाने के बाद तो जज थे भक्तिनाथ ठाकुर महाराज, उनको उनके सामने पेश किया गया। सबसे पहले भक्तिनाथ ठाकुर महाराज ने कहा, कल प्रभुपाद जी बता रहे थे, एक नायक को बुलाइए आप, और कोरट में नायक को बुलाया और कहा कि आप उनका बाल काट दीजिए। तो नायक भी घबरा रहे थे, तो वो भी सोच रहा था ये भगवान का बाल और मैं कैसे काटने की इच्छा नहीं है। तो फिर भगवत प्रभुपाद ने लिखा नहीं है, लेकिन प्रभुपाद ने कल बताया था कि भक्तिनाथ ठाकुर महाराज ने अपने हाथ से कैंची लेकर उनका बाल सब काट दिया, क्योंकि वो जानते थे भक्तिनाथ ठाकुर महाराज के योगी की सिद्धि उनके बाल में रहती है, जब उनका बाल पूर्ण रूप से निकाल दिया जाए तो वो सिद्धिहीन हो जाएगा, इसलिए उनका बाल निकाल के फिर बाद में जेल में डाल दिया उस भगवान को, ढोंगी भगवान को। तो जेल में डालने के बाद 6 साल तक वो रहे जेल में, 6 महीना तक जेल में रहे, फिर बाद में वो अपने आप को आत्महत्या करके वो अपना प्राण त्याग दिए। इसी प्रकार भक्तिनाथ ठाकुर महाराज ने ये ढोंगी को परास्त किया और सभी लोगों को वास्तविक दिखाया कि वास्तविक भगवान जगन्नाथ जी है, यह स्वंगी ये आपको सब अंधश्रद्धा की श्रद्धा के द्वारा आपको ठग रहे हैं। तो इसी तरह जगन्नाथपुरी में और ओडिशा में उनका ख्याति बनने लगा भक्तिवीर ठाकुर महाराज का। और साथ साथ एक मन में उनका दुख भी था कि उनका पुत्र थे, उनके 10 पुत्र थे भक्तिवीर ठाकुर महाराज के, लेकिन पुत्र था लेकिन उतना इतना शक्तिवान नहीं थे कि जो चैतन्य महाप्रभु की वाणी को हरिनाम को प्रसार कर सके। इसलिए जब जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए जाते थे तब परिक्रमा करते तब विमला देवी का जो पीछे के साइड में जगन्नाथ जी के पीछे के साइड में जो मंदिर है विमला देवी का, उधर जाकर प्रार्थना करते थे रोज कि मुझे ऐसा पुत्र दीजिए ताकि ये कृष्ण भावना और हरिनाम संकीर्तन जो युग धर्म है उनको प्रसार कर सके। और रोज प्रार्थना करते थे विमला देवी से, डायरेक्ट जगन्नाथ जी से नहीं प्रार्थना करते थे, विमला देवी से प्रार्थना करते थे। और ये प्रार्थना भी करना चाहिए देवी देवताओं के चरणों में, क्या क्योंकि हमारे हित के लिए, हमारे स्वार्थ के लिए प्रार्थना नहीं है, क्योंकि जगत के हित के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि उनको ऐसा पुत्र चाहिए ताकि इस भौतिक जगत में जो लोग दुखी हैं उनको दुख से मुक्त करा सके और हरिनाम को पूर्ण रूप से प्रचार कर सके। इसलिए वो विमला देवी से रोज प्रार्थना करते थे। और इसी प्रार्थना के दौरान उसी जगन्नाथपुरी में उनका जीवन ऐसे व्यतीत हो रहा था और पूरा जगन्नाथ मंदिर में वो देखभाल करते थे और पूर्ण रूप से शुद्ध रूप से जगन्नाथ की सेवा और सब कर रहा था। फिर बाद में उनको पुत्र प्राप्त हुआ कुछ समय के बाद, तो उसी का नाम उसने भक्तिवीर ठाकुर महाराज ने विमल प्रसाद रखा, क्योंकि विमला देवी का प्रसाद के रूप में वो आविर्भाव हुए हैं। तो विमल प्रसाद जो हमारे श्री प्रभुपाद के गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज थे, वही उनके पुत्र रूप में आविर्भाव हुए पर उनका नाम बल प्रसाद रखा। जब वो उनका जन्म हुआ भगवती माता जी से, तब देखा जाता है कि जो माँ के साथ वो बच्चे का जो आहार और जो जल वो पान करते उनकी नाड़ी रहता है, उनको काटना कब पड़ता है, लेकिन ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का आविर्भाव हुआ तब वो उनकी नाड़ी पूरी जनों की तरह वो लपेटी हुई थी, जिस तरह जनों लपेटते हैं उसी तरह वो लपेटी हुई थी। तो इसी से वो सिद्ध होता है कि वह दिव्य पुरुष भी थे विमल प्रसाद। पर उसी समय भक्तिवीर ठाकुर महाराज जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे, पर कुछ समय बीतने के बाद 6-7 महीना बीतने के बाद जब जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती है, अषाढ़ी बीज आता है, तो अषाढ़ी बीज के रथ यात्रा के दौरान वहाँ भव्य उत्सव होता है, हम सब भक्त लोग जानते हैं। तो उस उत्सव में यात्रा के दिन जगन्नाथ जी का रथ मंदिर से निकलकर गुनिसा मंदिर जा रहे थे, तो उसी दौरान के बीच भक्तिवीर ठाकुर महाराज का घर था, आज भी है उधर चैतन्य मठ, जो बड़ा रोड है वो बड़ा मार्ग है, उसी रोड मार्ग पर ही वो स्थान था भक्तिवीर ठाकुर महाराज का घर, और आज भी वहाँ चैतन्य मठ के रूप में भक्ति सरस्वती ठाकुर महाराज ने वो स्थापन किया है। तो उसी स्थान पर आए बीच में आकर वो वहाँ जगन्नाथ जी का रथ रुक गया और वहाँ से थोड़ा भी आगे हिल नहीं रहा है जहाँ भक्तिवीर ठाकुर महाराज का घर था। वो बहुत प्रयास किया फिर भी नहीं हिल रहा है रथ। और उसी समय राजा थे उनको हाथी भी मंगवाए और रथ को आगे करने के लिए, फिर भी रथ वहाँ से कुछ नहीं हिल रहा था, थोड़ा भी नहीं हिल, और बहुत समय वहाँ ही रथ रह गया। फिर भक्तिवीर ठाकुर महाराज की पत्नी भगवती माता जी वो छोटे बच्चे 6 महीने को बच्चे को लेकर जगन्नाथ जी को दर्शन कराने के लिए आई वो रथ के सामने, और जगन्नाथ जी के सामने जब उनको रखा विमल प्रसाद को, तब साक्षात जगन्नाथ जी का रथ और जगन्नाथ जी का हार उनके गले से गिर कर और विमल प्रसाद के गले में आ गया। वह भी जगन्नाथ जी की कृपा के पात्र बने श्री विमल प्रसाद। इसी तरह जगन्नाथ जी की कृपा रही भक्तिवीर ठाकुर महाराज उनके परिवार पर, और उस समय वहाँ सेवा कर रहे थे। फिर बाद में उसी दौरान एक बार वो वृंदावन गए थे यात्रा के लिए, उनको ब्रजमंडल परिक्रमा करना था भक्तिवीर ठाकुर महाराज को, तो ब्रजमंडल परिक्रमा किया वो 90 दिन में, 3 महीना लगा, 1 महीने में हम करते हैं, लेकिन भक्तिवीर ठाकुर महाराज ने 3 महीने में ब्रजमंडल परिक्रमा किया और 3 महीना वहाँ रुके, तो उसका मन इतना वृंदावन से प्रभावित हो गया तो वो सोचने लगे अभी यहाँ से मुझे भी जाना ही नहीं है। अभी ओरिसा या जगन्नाथपुरी कहीं नहीं जाना है, मैं इधर ही निवास करूं। राधा कुंड तट कुंज कुटीरा गोवर्धन पर्वत यमुना तीर कुसुम सरोवर मानसी गंगा, उस भजन में लिखा है वही भक्ति ठाकुर महाराज। ये सब छोड़ के कहाँ नहीं जाऊं, ये सब छोड़ के राधा कुंड गोवर्धन पर्वत यमुना तीर कुसुम सरोवर मानस गंगा, उनको मन इतना प्रभावित और वहीं लगे, क्योंकि वो वास्तव में रूप विलास मंदिरी है ना, राधे राधिका की सेविका है, तो वो सेवा करने के भाव में उधर ही अभी मुझे यहाँ छोड़कर वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाना है, इधर ही मैं निवास पूरा कुछ कुटीर बनाकर इधर ही रहूंगा, ऐसा वो मन में सोच रहे। वो उधर ही रह रहे थे कुछ समय रहे, फिर बाद में एक दिन उनको सपने में श्री चैतन्य महाप्रभु आए श्री भक्तिनाथ ठाकुर महाराज के, और सपने में आदेश दिया कि आप इधर मत रहो वृंदावन में, आप नवद्वीप वापस जाइए, क्योंकि आपको जो मेरी लीला मेरे स्थलिया जो लीला की स्थलिया वो लुप्त हो गई है, उनको पुनः प्रकाशित करना है, इसलिए आप वृंदावन छोड़कर वापस जाइए नवद्वीप, और आप नवद्वीप में जो मेरी लीला स्थली है वो सब समय के प्रभाव में लुप्त हो गए हैं, उनको फिर से प्रकाशित कीजिए। तो इसी आज्ञा को चैतन्य महाप्रभु को सपने में आदेश, और इस आज्ञा को ग्रहण करके फिर बाद में वृंदावन को छोड़कर फिर बाद में वो कभी नहीं गए वृंदावन भक्ति ठाकुर महाराज। फिर बाद में वो फिर से जगन्नाथपुरी जगन्नाथपुर बाद में छोड़ दिया, फिर बाद में फिर से बंगाल आ गए, और बंगाल आकर इस गाँव में रह रहे थे, फिर उस गाँव में थोड़ा समय रहे, वहाँ उनको एक मुलाकात हुआ बंकिम चंद्र, उस समय वो विद्वान माने जाते थे बंकिम चंद्र, उसने कृष्ण भगवान के ऊपर एक ग्रंथ लिखा था जो कोई तथ्य नहीं था उसमें, वो विद्वान माने जाते थे लेकिन वो भौतिक रूप में वैष्णव या आध्यात्मिक रूप में वो विद्वान नहीं थे, बंकिम चंद्र जो कहीं आज हमारे न्यायालय या भारत की कचहरी में उनका नाम भी है और कहीं कहीं तस्वीर भी लगा हुआ है बंकिम चंद्र। हाँ, तो वो उनसे मुलाकात हुई उस गाँव में, तो उसने बंकिम चंद्र ने देखा कि ये भक्ति ठाकुर महाराज जो जगन्नाथपुरी से आए इधर, सब ख्याति थी पूरे बंगाल और ओडिशा में भक्ति ठाकुर महाराज का, तो वो प्रमाण करने के लिए उनके पास गए, वो ग्रंथ लेकर जो कृष्ण भगवान के चरित्र ऊपर उसने लिखा था पूरा जीवन चरित्र पर, कि अगर भक्ति ठाकुर महाराज कह दे कि नहीं ये सही ग्रंथ है तो मेरा ख्याति पूरे विश्व में फैल जाएगा, बंकिम चंद्र आए उस हेतु के लेकर। तो बंकिम चंद्र आए भक्तिवर ठाकुर महाराज के पास, और भक्तिवर ठाकुर महाराज ने देखा तो ऐसे ही था, उसमें कुछ तथ्य नहीं था, क्योंकि उसमें अपना अहंकार वश वो ग्रंथ लिखा था। तब चार दिन के साथ उनके चर्चा हुई बंकिम चंद्र के साथ भक्तिवर ठाकुर महाराज की, और भागवतम और भगवद्गीता और वेद शास्त्र के आधार पर उनका पूरा खंडन कर दिया उनका ग्रंथ का, फिर वो चले गए बंकिम चंद्र। ऐसे ही और वो तो विद्वान थे वो तो उनका खंडन करके भक्तिवर ठाकुर और पूरा ओडिशा और बंगाल में ख्याति बढ़ गया भक्तिवर ठाकुर महाराज का, और जज के रूप में वो आ गए थे उसी समय। फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु का आदेश भी उनका चित्त में लड़ रहा था कि मैं कैसे चैतन्य महाप्रभु की स्थलिया जो लुप्त हो गई है उनको कैसे प्रकाशित करूँ, तो उसी चिंतन से वो जैसे फिर बाद में बारामती गाँव में आए, वो फिर दूसरा गांव में आए रहने के लिए, वहाँ वो रह रहे थे और चिंतन कर रहे थे कि मैं कैसे किसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु की स्थलिया को मैं प्रकट करूँ। और उसी समय उसने साथ में ये भी देखा कि जब तक मैं ये जज के पोस्ट पर रहूँगा तब तक मैं ये कार्य नहीं कर पाऊँगा, इसलिए वो इस्तीफा दे का मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रहे थे, क्योंकि इतने वो निपुण थे भक्तिवर ठाकुर महाराज उस कार्य में, जज के कार्य में जो जो कई सालों केस पड़ा हुआ था पेंडिंग वो तुरंत सॉल्व कर देते थे उस मिनटों में, और एक दिन में कितने केस भी वो सॉल्व करते थे, वो इतने बुद्धिशाली थे, तो इसलिए उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रहे थे गवर्नमेंट। फिर उसने कहा कि नहीं मुझे छोड़ना है, तो फिर गवर्नमेंट ने कहा उस अंग्रेज शासन ने कि आपकी इच्छा क्या है बताइए, आपको क्या चाहिए। तब भक्ति ठाकुर मुझे चैतन्य महाप्रभु की स्थिति लीला स्थल को प्रकाशित करना है, मुझे नवद्वीप जाना है। तब वो अंग्रेज ऑफिसर ने कहा कि आपको वहाँ ट्रांसफर किया जाए और आप वहाँ से इधर आइए रोज कचहरी में, ऐसा कोई सुविधा करेंगे, तब भक्तिवत ठाकुर महाराज उस गांव को छोड़कर आए स्वरूपगंज जो गोद्रम द्वीप में है और कृष्णनगर के जिले में डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वो। तो कृष्णनगर में वो कचहरी था और स्वरूपगंज में वो भक्तिवत ठाकुर महाराज रहने के लिए आए। जो गोद्रम द्वीप है, नवद्वीप में गोद्रम द्वीप है, गोद्रम द्वीप में वो स्वरूपगंज पर है और स्वरूपगंज में उसने अपना घर बनाया जो स्व आनंद सुखद कुंज उस घर का नाम है। स्व आनंद सुखद कुंज उस घर का नाम रखा भक्तिवत ठाकुर महाराज ने और उधर वो निवास करने लगे। तो गोद्रम द्वीप में स्वरूपगंज में भक्तिवत ठाकुर महाराज और अंग्रेज सरकार ने उनके घर से वो कचहरी तक कृष्णनगर तक रेलवे लाइन का उनके लिए स्पेशल ताकि आने जाने में उनका समय व्यर्थ न जाए और असुविधा न हो तो रेलवे लाइन डाल दिया और रोज उनके लिए ट्रेन आती थी और दो डब्बे की ट्रेन रहती थी, उसमें इतना बड़ा ट्रेन नहीं था उसी समय। आज भी कलकत्ता में चलता है उसको ड्रम बोला जाता है। इसी प्रकार वही ट्रेन डाल दिया और भक्त ठाकुर महाराज रोज दिन में दो बार जाते थे सुबह और दोपहर के बाद। तो गोद्रम द्वीप में रहते थे और कचहरे का भी काम कार्य करते थे। तो गोद्रम द्वीप भी बहुत पवित्र स्थल है और सुंदर भी स्थल है। जाह्नवी नदी के तट पर जालिंदिनी नदी के तट पर जो नवद्वीप मंडल परिक्रमा करते वो जानते हैं और उनका वो स्थान का भागवत में भी उल्लेख है 12वें स्कंद में मार्कंडेय ऋषि के द्वारा। गोद्रम द्वीप, गोद्रम मतलब गो मतलब गाय, ध्रुम वृक्ष, गोद्रम द्वीप गाय का मतलब सुरभि। तो सुरभि गाय उधर आई थी स्वर्ग से, सुरभि कुंज भी वहाँ स्थान है जहाँ नित्यानंद प्रभु ने हरिनाम नामर्थ शुरू किया था। सुरभि कुंज वो स्थान भी है, वो स्वरूपगंज में नामर्थ केंद्र। तो स्वरूपगंज वो नामर्थ केंद्र वो गोद्रम द्वीप में रहे। तो गोद्रम द्वीप में वैसे भागवतम में उसका उल्लेख है थोड़ा 12वें स्कंद 9वें अध्याय में मार्कंडेय ऋषि द्वारा। जब मार्कंडेय ऋषि नर नारायण भगवान का दर्शन किए तब उनकी इच्छा हुई मार्कंडेय ऋषि की कि मुझे आप अपनी माया का दर्शन करवाइए और माया में आप किस तरह सृष्टि का पालन करते हैं, किस तरह सृष्टि का रचना करते हैं और किस तरह सृष्टि का प्रलय करते हो, उस माया का मुझे दर्शन कराइए। नर नारायण से प्रार्थना की मार्कंडेय मुनि ने। तो प्रार्थना करने के हिसाब से जब नरनारायण ने उनको इच्छा पूर्ण करने के लिए वो लीला शुरू किया, जब पहले उनको दिखाया किस तरह सृष्टि करते हैं, फिर बाद में पालन और फिर बाद में पूर्ण रूप से उन्हें लय, किस तरह सृष्टि का लय होता है वो मार्कंडेय मुनि को दिखाया। किस तरह थोड़ा थोड़ा करके बारिश आया, फिर तूफान आया और बहुत बारिश आया एक साथ में और इतना पानी भर गया कि पूरा संसार उसमें बह गया और साथ साथ में मार्कंडेय ऋषि भी बहने लगे उस पानी में, तैरने लगे और उनको कुछ नहीं दिख रहा था और इतना भयभीत हो गए। तो वो सोचने लगे अपने आप को, मैंने ऐसे प्रार्थना क्यों की भगवान से माया देखने के लिए, और पछताने लगे मन में और कुछ उनको दिखाई नहीं रहा, पूरे सारे विश्व में जल ही जल और उसका कुछ और नजर ही नहीं आ रहा था और डर जाएगा ना कोई भी व्यक्ति कि पूरा संसार उनके अलावा जल ही जल दिखेगा, तो कोई स्थान नहीं, कोई वृक्ष नहीं, कुछ नहीं और खाली जल ही जल और वो पूरे जल में तर रहे थे मार्कंडेय ऋषि। पूरा घबराहट होने लगा और प्रार्थना करने लगा भगवान से। तब उनको उस धाम गोद्रम द्वीप के धाम को एक दीप दिखने लगे, क्योंकि कहा जाता है कि जो भगवान का धाम होता है वह शाश्वत होता है, उसको प्रलय में वो नष्ट नहीं होता है। वृंदावन, जगन्नाथपुरी, नवद्वीप मंडल, नवद्वीप धाम वो हर समय दिव्य है। प्रलय होने के बाद भी जब युग का परिवर्तन या चतुर्युग समाप्त होता है, जब प्रलय होता है, तब ये धाम नष्ट नहीं होता है, धाम शाश्वत रहता है, इसी प्रकार रहता है। तो उसी प्रकार मार्कंडेय ऋषि ने जब उस दीप को देखा तब उनको थोड़ा सांत्वना लगा। तो उस दीप पर आए और वहाँ उसने एक वृक्ष देखा, तो बड़ा सा बरगद का वृक्ष था। तो उस वृक्ष के नीचे एक और फिर कई साल तक वो पानी में तैर रहे थे, तो बहुत भूख भी बहुत लगा था। तो इस भूख लगने के कारण वो तड़प रहे थे। तो इस इच्छा को जानकर सुरभि देवी जो गाय के रूप में सुरभि स्वर्ग से आए वहाँ आई और वृक्ष के नीचे और उनको दूध पिलाया मार्कंडेय ऋषि को। तो दूध पिलाने के बाद वो संतुष्ट हुए, फिर बाद में प्रार्थना किया भगवान से, भगवान ने भी उनको दर्शन दिया, वृक्ष के पत्ते के ऊपर भगवान ने दर्शन दिया, फिर बाद में दर्शन देकर बाद फिर बाद में तुरंत तब समाप्त हो गया, जैसे थे ही वैसे आ गए मार्कंडेय ऋषि। तो उसी स्थान गोद्रम द्वीप है जो मार्कंडेय ऋषि ने वो देखा था प्रलय के समय, वो गोद्रम द्वीप में भक्तिनाथ ठाकुर महाराज वहां निवास कर रहे थे, और आज भी उनका घर स्वानंद सुखद कुंज है और बहुत पवित्र स्थान है वो, क्योंकि देखा जाता है। और वहाँ जब नवदीप मंदिर परिक्रमा वहाँ जाती है, तब इसी साल प्रबोधानंद सरस्वती महाराज का वहाँ प्रवचन था, तो उसने बताया था कि यह स्थान बहुत पवित्र है। पवित्र क्यों है? क्योंकि दिव्य धाम है, और साथ साथ में जब भक्तिनाथ ठाकुर महाराज इस स्थान पर निवास कर रहे थे तो हमारे संस्था के आचार्य सर आचार्य वहाँ एकत्रित होते थे। जगन्नाथ बाबा जी महाराज भी कोलद्वीप में रहते थे, नवद्वीप में, वहाँ से भी कभी कभी गौर कथा सुनने के लिए भक्तिनाथ ठाकुर महाराज के पास आते थे, और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज भी वहाँ रहते थे, वो भी गौर कथा सुनने के लिए भक्तिनाथ ठाकुर महाराज के पास आते थे, और प्रतिष्ठान सरस्वती महाराज तो थे उनके साथ विमल प्रसाद के रूप में, वो भी वहाँ आते। हमारे आचार्य चार आचार्य उसी स्थान पर एक ही साथ गौर कथा सुनते थे, तो बताइए कितना महत्वपूर्ण वो स्थान रहा होगा और कितना पवित्र स्थान है वो, चारों चार एक ही समय और गौर कथा वहाँ बैठकर सुन लेते, और भक्तिनाथ ठाकुर महाराज सबको पूर्ण रूप से शुद्ध रूप से गौर कथा सुना रहे थे। और उतना वो साथ साथ में उनको ये भी स्थान चैतन्य महाप्रभु का प्रकाशित करना था, और वो कचेरी में जाकर वो देखते थे कौन सी जगह है, वो कौन सा गांव है कि जहाँ चैतन्य महाप्रभु का आयुर्वाद हुए थे, वो देख रहे थे पर कहीं उनका मेल नहीं हो रहा था। और कुछ को उसी बंगाल में उस नवदीप धाम में सभी लोग को ऐसी मान्यता थी कि नवदीप धाम में चैतन्य महाप्रभु का प्रागत्य स्थल है, तब वो छानबीन किया भक्तिनाथ ठाकुर महाराज, तब पता चला कि नवदीप धाम जो नवदीप शहर है उनका तो विस्तार हुआ है, उनका निर्माण हुआ है, तो 100 साल के पूर्व वो गांव नहीं था, वो शहर नहीं था नवदीप, 100 साल पूर्व वहाँ कुछ नहीं था, 100 साल के बाद ही नवदीप शहर प्रकट हुआ है या निर्माण हुआ है, तो ये तो हो ही नहीं सकता उनका स्थान चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान। तो फिर बाद में और ढूंढने लगे, और गंगा इतना वहाँ देखा कि बाढ़ आता है हर साल, तो कई कई जगह पर जहाँ पानी होता है वहाँ भूमि हो जाता है, जहाँ भूमि होता है वहाँ पानी हो जाता है। हम देखे एक बार नवदीप मंदिर परिक्रमा कर रहे थे, तो एक बार एक साल गए तब एक जहाँ प्रताप नगर से शंकर नगर जाते तो नाव पार करते हैं, तो उसी तट पर जाते हैं गंगा को नाव पकड़ने के लिए, तो वहाँ एक साल गए तो वहाँ पूरा मूंगफली का खेत लगा हुआ था, बहुत बड़ा खेत था, और वहाँ से नाव पकड़ा था। और पिछली बार गए तो खेत नहीं था, पूरा पानी से भरा हुआ था, क्योंकि गंगा नदी का बाढ़ हर बार आता है और कहीं जमीन होता है भूमि होता है वहाँ बहाकर पानी चला जाता है, और जहाँ पानी रहता है वहाँ भूमि बन जाता है। तो इसी तरह इसी कारण चैतन्य महाप्रभु का प्रागत्य स्थल लुप्त जैसा कोई जानते नहीं थे कहाँ थे और कहाँ कहाँ सब लीला किया चैतन्य महाप्रभु ने, तो चिंतन में लगे हुए थे किस तरह मैं इस स्थल को प्रकाशित करूँ भक्तिनाथ ठाकुर महाराज। तो वो स्वरूपगंज में रह रहे थे, और उनका घर ठीक जानंगी नदी के सामने उनका घर था, 2 माला का उनका मकान है, और उसी मकान में ऊपर के माले पर उनका भजन कर रहा था और उसी में जप कर रहे थे। तो एक दिन उसने देखा कि सामने किनारे जो आज वर्तमान में योगपीठ है वहाँ उसने देखा कुछ प्रकाश दिव्य प्रकाश हो रहा है, इस गंगा जी के जालंगी नदी के इस किनारे से उसने देखा कि सामने किनारे बहुत दिव्य प्रकाश हो रहा है। तब उनके साथ प्रतिष्ठित सरस्वती महाराज भी थे विमल प्रसाद, तो उस प्रतिष्ठित ठाकुर महाराज ने कहा आपको दिखा रहे हैं उधर कुछ प्रकाश हो रहा है, तो भक्तिसिंह महाराज ने कहा मुझे नहीं दिखता है कुछ, लेकिन पूर्ण रूप से भक्तिनाथ ठाकुर महाराज देख रहे थे प्रकाश उधर हो रहा है। तब कुछ समय के बाद वहाँ गए वो स्थान पर, तो वहाँ जाकर देखा तो पूरा एरिया मुसलमान से भरा हुआ था, और मियाँपुर उस स्थान को बोलते थे मियाँपुर, क्योंकि मुसलमान ही ज़्यादा रहते थे उधर, तो मियाँपुर के जान के फिर बाद में और वहाँ जो और भ्रमण किया पूरा विस्तार एरिया में, तभी एक स्थान पर देखा कि वहाँ तुलसी का बहुत बड़ा पौधा लगा हुआ था और बहुत बड़ा तुलसी था। तो उनको लगा कि यही स्थान लगता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान यही है। फिर बाद में दूसरे दिन वही उनको रियलाइजेशन हुआ, साक्षात्कार हुआ कि वहाँ दिव्य प्रकाश हो रहा है। तो निश्चित रूप में वो जान गए यही स्थान है चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान। तो उनको और प्रमाणित करने के लिए श्री जगन्नाथ जी बाबा जी को वहाँ गए, जब भजन कर रहे थे कौलद्वीप में, नवद्वीप शहर में। तो जगन्नाथ बाबा जी को प्रार्थना की और कहा कि आप चलिए, तो चैतन्य महाप्रभु का स्थान थोड़ा मुझे संकेत मिला है, लेकिन आप निर्णय कीजिए कि वही स्थान है। तब जगन्नाथ बाबा जी महाराज, उनका सेवक शिष्य बिहारी दास, उनको बहुत वृद्ध हो चुके थे जगन्नाथ बाबा जी महाराज, उनको कूड़े में देकर सर पे लेकर वहाँ गए और बहुत वृद्ध थे, 137 साल तक रहे थे जगन्नाथ बाबा जी महाराज धराधाम पर। तो उस अंतिम समय था उनका, तो वृद्ध होने के कारण उनका शरीर भी गल गया था एकदम, हाथ पांव बिल्कुल गल गया। और वो लेकर आए उधर सर के ऊपर उस स्थान पर मियापुर गांव में, और आते वो तो सब देखा और जहाँ तुलसी लगा हुआ था उस स्थान पर आए तो जगन्नाथ बाबू जी महाराज जो ऊपर कुंडे में थे वहाँ से कूदी मारकर नीचे आ गए और नाचने लगे जोर जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उस स्थान पर आकर कीर्तन करने लगे जगन्नाथ बाबू जी महाराज और उछल उछल के नाचने लगे, क्योंकि उनके हाल चलने की क्षमता नहीं थी, इतना शरीर वृद्ध था। फिर भी वहाँ स्थान आकर और कहने लगे यही स्थान है चैतन्य महाप्रभु का प्रागट्य स्थली यही है। तब पूरा बंगाल में और भक्तिवीर ठाकुर महाराज ने निश्चित किया कि यही स्थान है चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान। तो फिर बाद में पूर्ण रूप से भक्तिवीर ठाकुर महाराज ने कहा कि मुझे अपने जो ऑफिस कार्य है उनको त्यागना है और चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान पर उनके स्थली को सबको प्रकाशित करना है और उधर एक मंदिर का निर्माण करना है उस मियापुर गांव में। तो फिर बाद में उसी कार्य में फिर छोड़ दिया पूरा कारोबार उसने जो उनका था, कोर्ट में जाने जज करना और, तो छोड़कर फिर बाद में उसी कार्य में लग गए निर्माण, मंदिर का निर्माण और स्थलियों को पुनः जागृत प्रकाशित करने के लिए। और मंदिर वो जमीन खरीद कर लिया, फिर बाद में वो जो मुसलमान के हाथ में थी वो स्थान वो जमीन पूरा ले लिया खरीद करके। फिर बाद में जगत इस मंदिर निर्माण के लिए खुद भक्तिवीर ठाकुर महाराज कलकत्ता जाते थे और सभी एक एक घर में जाकर एक एक रुपया ज़्यादा नहीं मांगते थे, एक रुपया मांगते थे, क्योंकि भक्तिवीर ठाकुर महाराज की इच्छा थी कि इस स्थान को जहाँ मंदिर निर्माण होगा उस सभी जीवों का सभी व्यक्तियों का उनके योगदान हो, ताकि सबको चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो और उनका कल्याण हो। इसलिए खुद इतना बड़ा पोस्ट ओवर का पूरा ख्याति था उसमें बंगाल और उड़ीसा में भक्तिवीर ठाकुर महाराज का, फिर भी खुद जाकर कलेक्शन करते और एक एक ही रुपया मांगते थे घर घर जाकर कलकत्ता में और सभी विस्तारों में, और उस धन राशि को लेकर उधर वहाँ 1895 में मंदिर निर्माण किया भक्तिवीर ठाकुर महाराज ने, जो आज योगपीठ से नाम जाना जाता है, और वहाँ गौर विष्णु प्रिया का विग्रह स्थापित किया श्री भक्तिवीर ठाकुर महाराज ने। और फिर बाद में उधर एक ग्रंथ की रचना, संस्कृत में ग्रंथ था और उस ग्रंथ 46 पन्ने का ग्रंथ था, वो उसका नाम नहीं दिया वो ग्रंथ का, उस ग्रंथ का चैतन्य महाप्रभु का विशेष करके उसमें वर्णन था और वो ग्रंथ सभी विश्वविद्यालयों में वो भेजा भक्तिवीर ठाकुर महाराज ने। और उसमें एक आर्टिकल दिया था भक्तिवीर ठाकुर महाराज ने कि कोई ऐसा व्यक्ति इस भूमि पर आएगा भी जो सारे विश्व में परिभ्रमण करेगा और हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करेगा। और ये 96 में उसने ये आर्टिकल दिया, वो उसमें ग्रंथ में आर्टिकल दिया था। और उसी 96 में श्री प्रभुपाद का आविर्भाव हुआ। श्री प्रभुपाद की जय, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રી ભક્તિનાથ ઠાકુર મહારાજ ઈચ્છા ઇસ 96 મેં ઓર વૈશ્વિક પૂર્ણ કરને કે લે ભગવાન કે દ્વારા શ્રી પ્રભુપાદ કા 96 મેં આવિર્ભાવ હુઆ. તો 96 મેં ફિર બાદ મેં ફિર ગ્રંથ ફિર બાદ મેં અનેક ગ્રંથ કી રચના કી ઓર ઉનકા શરીર જો થાય આપ તો જાણતે હૈ સબ ભક્ત કિસ તરહ વો પૂરે દિન મેં કિસ તરહ વ્યસ્ત રહેતે થે ઓર પૂરા દિન ગ્રંથ કી રચના ઓર અનેક ગ્રંથ દેખે કલ્યાણ કલ્પતરુ ભજન રહસ્ય ઓર 1000 સે અધિક ભજન લિખે હૈ ઓર પૂરા વ્યસ્ત કિયા ફિર ઓર કઈ ગ્રંથ સંસ્કૃત મેં સે બંગાલ મેં ભી ટ્રાન્સલેશન કિયે ઓર ઇસી તરહ વો ભજન મેં ઓર ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કી જન્મસ્થલીઓ કો પ્રકાશિત કરતે હુએ ફિર બાદ મેં ઉસમે એક ગ્રંથ ઓર ભી પ્રકાશિત કિયા અપને ઠાકુર મહારાજ ને જો નવદીપ મંડળ પરિક્રમા મહિમા મહાત્મ્ય હૈ જો જીવ ગોસ્વામી દ્વારા ઓર નિત્યાનંદ પ્રભુ કો જો પ્રથમ વાર પરિક્રમા હુઈ થી ઉસી ગ્રંથ કો ઉસને પ્યાર કે રૂપ મેં પ્રસ્તુત કિયા હૈ પ્રત્યુ ઠાકુર બહુ સુંદર ગ્રંથ હૈ વો નવદીપ મંડળ મહાત્મ્ય ઉસ ગ્રંથ કો ભી પ્રકાશિત કિયા પૂરા સ્થળ કો પ્રકાશિત કરકે ઇસ સ્થાન પર કોણ સા લીલા કિયા ભગવાન ગૌરંગ મહાપ્રભુ ને પૂર્ણ રૂપ સે વિસ્તાર ગ્રંથ મેં પ્રકાશિત કિયા હૈ એસે કઈ ગ્રંથ હરિનામ ચિંતામણી ભી ગ્રંથ રચના કી ભક્તિ ઠાકુર મહારાજ ને જો ઇસ ગ્રંથ મેં પૂર્ણ રૂપ સે વિસ્તાર રૂપ સે વર્ણન હૈ કે કિસ તરહ જપ કરના ચાહીએ ઓર કિસ તરહ જપ કરને સે પૂર્ણ લાભ પ્રાપ્ત કર સકતે હૈ વો ભી હરિનામ ચિંતામણી મેં દિયા હૈ વિશેષ કરકે ઓર ઇસી તરહ ભજન રહસ્ય ભજન કેસે કિયા જાય ઉનકા રહસ્ય ક્યા હૈ વો ભી ઉસ ગ્રંથ મેં પ્રકાશિત કિયા ભજન રહસ્ય નામ કે ગ્રંથ મેં તો ઇસી તરહ કઈ ગ્રંથ કી રચના કી ફિર બાદ મેં 1900 મેં 18વીં સદી સમાપ્ત હોને કે બાદ 1900 ફિર બાદ મેં ભક્તિ ઠાકુર મહારાજ સબ કાર્ય મુક્ત સમેટ કર લીલા સ્થળ કા પ્રકાશિત હો ગયા ગ્રંથ કા પ્રકાશિત હો ગયા ફિર બાદ મેં વો અપને આપ સોચને લગે કે મુજે અભી ભગવાન કા નામ કા જપ કરના હૈ ફિર બાદ મેં બંગાળ છોડ કે ફિર સે પુરી ચલે ગયે જગન્નાથપુરી ઓર જગન્નાથપુરી જા કર 1908 મેં વહાં રહે ઓર વહાં રહ કર 2-3 સાલ હરિનામ હરિદાસ ઠાકુર કી સમાધિ જહાં હૈ વહાં વો નિરંતર જપ કરતે થે ઓર ટોટા ગોપીનાથ મેં જપ કરતે થે નિત્ય રૂપ દિન જપ હી ઓર કુછ કાર્ય નહીં ઓર ઇતના ભાવ વિભોર હોકર જપ કર રહે થે ઓર આજ ભી હમારા જો સેન્ટર હૈ ઇસ્કોન સેન્ટર જગન્નાથપુરી મેં હરિદાસ ઠાકુર કે સમાધિ કે પાસ વહાં ભક્તિ ઠાકુર મહારાજ કે શ્રી વિગ્રહ ભી રખે વહી સ્થાન પર વો જપ કરતે થે ભક્તિ ઠાકુર મહારાજ ઓર પૂર્ણ રૂપ સે ઓર પૂર્ણ રૂપ સે વો રસાસ્વાદન નામ જપ મેં કર રહે થે ઓર 2008 મેં વહાં ગયે ઓર પૂર્ણ રૂપ સે જપ કિયે કઈ સાલ તક ફિર બાદ મેં ફિર સે વહાં ગયે નદિયા ઓર વહાં 1914 મેં ઉનકા શરીર ત્યાગ કર દીએ ઓર નિત્ય રૂપ નિત્ય લીલા મેં ભગવાન કે ધામ મેં જો વાસ્તવિક ઉનકા જો રૂપ વિલાસ મંજરી હૈ વો સ્થાન ઉનને પ્રાપ્ત કર લિયા એસે શ્રી ભક્તિનાથ ઠાકુર મહારાજ કા જીવન ચરિત્ર ઉનકા આવિર્ભાવ આજ કે દિન હુઆ હૈ તો બડા સૌભાગ્ય હૈ એસે કુલ મેં એસે પરંપરા મેં હમારા દીક્ષા હુઆ હૈ કે હમારા વાસ્તવિક બડા સૌભાગ્ય હૈ કે હમે અપને આપકો ધન્ય માનના ચાહીએ કે પ્રભુપાદ કી કૃપા સે હમે એસે કુલ મેં હમારા દીક્ષા હુઆ હૈ ઓર દીક્ષા હોના મતલબ હમારા ઇસ કુલ મેં જન્મ હુઆ હૈ વાસ્તવ મેં તો કઈ સાલ કઈ જન્મો સે હમ ઓર માતા પિતા ગ્રહણ કર રહે હૈ લેકિન ઇસ મનુષ્ય શરીર પ્રાપ્ત કરકે વાસ્તવ મેં જો હમારા પુણ્ય જબ ઉદય હોતા હૈ કઈ જન્મો કા તબ એસે કુલ મેં હમારા ગુરુ ઓર હમારા ગુરુ કે રૂપ મેં સ્વીકાર હોતે શિષ્ય કે રૂપ મેં હમારા સ્વીકાર હોતા હૈ ઓર દીક્ષા મિલને કે બાદ હમારા દૂસરા જન્મ ઇસ કુલ મેં હોતા હૈ તો હમારા બડા સૌભાગ્ય હૈ કે ઇસી કુલ મેં હમારા સભી ભક્ત પ્રભુપાદ કી કૃપા થી વિશેષ હમે એસા અવસર પ્રાપ્ત હુઆ હૈ જૈસે ભક્તિનાથ ઠાકુર મહારાજ કા શુભ પ્રાગટ્ય દિન આજ કે દિન હૈ તો સભી હમ સબકો પ્રાર્થના કરના ચાહીએ ભક્તિનાથ ઠાકુર મહારાજ કે ચરણ મેં તાકે હમે ભક્તિ મેં ઓર પ્રગતિ કર સકે ઓર જો ઉનકા હેતુ હૈ ઉનકા લક્ષ્ય થા કે પૂરે વિશ્વ મેં હરિનામ કા પ્રસાર હો तो उसमें कुछ अंश रूप में हम प्रसार कर सके और उनके कार्य में उनका इच्छा के में कुछ सफलता प्राप्त कर सके। तो प्रतिमा ठाकुर महाराज का यही चरण में प्रार्थना है। एक अंत में मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि जब ऐसे वैष्णव और आचार्य के चरण में हम लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता और प्राप्त अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। एक बार एक सभी पक्षों में एक मीटिंग सभा लगी हुई थी। इसी सभा में ऐसी चर्चा हो रही थी कौन सबसे ज्यादा उड़ सके। पक्षी इकट्ठा हुए और वहाँ उस सभा में गरुड़ जी भी आए थे और सभी पक्षी आए थे कि कौन सबसे बड़ा ऊंचा उड़ सके। और निश्चय किया कि सब रेस लगाइए तो सब अपने अपने हिसाब से उड़ने लगे। तो और पक्षी तो ठीक है, लेकिन कौवा अपने आप को बहुत समझ रहा था कि हम सबसे ऊंचे उड़ सकते हैं। तो वो भी उड़ने लगे और कुछ ऊपर जाकर वो भी थक गए। फिर गरुड़ और बाज तो सबके ऊपर जाते हैं और साथ में गरुड़ जी उड़ रहे थे। तो गरुड़ जी उड़ रहे थे और कहीं और पक्षी भी थोड़े थोड़े उड़ रहे और गरुड़ जी और ऊपर जा रहे थे। तो एक छोटी सी सीढ़िया ने देखा गरुड़ जी उड़ रहे थे, वो सीढ़िया आकर उनके पंख पर बैठ गई और गरुड़ जी उड़ रहे थे ऊपर ऊपर। और सब पक्षी नीचे आकर निर्णय कर लिया कि सबसे ऊपर उड़ सकता है बाज पक्षी या गरुड़ जी, उनके ऊपर और कोई नहीं जा सकता है। ऐसा निर्णय देने वाले थे और गरुड़ जी नीचे आ रहे थे, तब वो चिड़िया वहां से उड़ी और बोले कि आप मंच निर्णय दीजिए, गरुड़ से ऊपर मैं भी उड़ रही हूँ, गरुड़ तो मेरे नीचे है उसके ऊपर मैं भी उड़ रही हूँ। तब तो गरुड़ जी भी हंसने लगे, वास्तव में सत्य है तो ऐसा क्यों हुआ। तो क्योंकि वो गरुड़ जी का संग लिए थे ना, गरुड़ जी का संग के कारण, उनका संग लेने के कारण वो गरुड़ से भी ऊपर उड़ सके। तो इसी तरह हम ऐसे आचार्य प्रभुपाद और जो हमारे वर्तमान आचार्य है और आगे जो पूर्व में हुए भक्ति ठाकुर महाराज भक्ति सर, उनके आज्ञा के अनुसार उनके निर्देश के अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे, उनका संग प्राप्त करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी कोई क्षमता नहीं है, हम तुच्छ है, वो चिड़िया से भी तुच्छ है हम। लेकिन उनके संग में रहेंगे तो निश्चित रूप से हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी तरह हमें आचार्य और जो पूर्व आचार्य भक्ति ठाकुर महाराज, जगन्नाथ बाबू जी महाराज, द्वार विश्वदास बाबू जी महाराज, उनके चरणों में प्रार्थना करना चाहिए, जो उनके आदेश उनके निर्देश अनुसार उनके ग्रंथ का अध्ययन करके अपना जीवन और उनका संग, उनका वास्तविक संग वही है, उनका ग्रंथ का अध्ययन करना, उनके आज्ञा का पालन करना और विशेषकर प्रभुपाद की आज्ञा का पालन करना, वही उनका संग है। तो इसी तरह हम प्रभुपाद के संग में रहेंगे और आचार्यों के संग में रहेंगे तो निश्चित रूप से हम और उड़ सकते हैं और भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रार्थना के साथ हम श्री भक्तिविनोद ठाकुर महाराज के चरणों में तन्वर प्रणाम करते हुए हम प्रार्थना करते हैं कि हमें भी इस आशीर्वाद दीजिए आज शुभ अवसर पर, ताकि हम भी कुछ प्रगति कर सके और हरिनाम संकीर्तन का प्रचार कर सके। श्री भक्तिविनोद ठाकुर महाराज की, श्री प्रभुपाद महाराज की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। सचिदानंद भक्ति ठाकुर महाराज की जय। गीता गौर प्रेमानंदे।